मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज जून 2016 का आखिरी दिन है, 30 जून 2016, और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथियों, इसी क्रम में जैसा कि आप सब रोज मुझे स्वागत करने का मौका दे रहे हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं खुशी मेहता, आप कोदरमा झारखंड से हैं, सभ्य सांची खरे जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, पूजा खरे आप भी जौनपुर उत्तर प्रदेश से ही हैं, प्रीति गुप्ता दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल से हैं, विवेकरेंद्र कुमार नालंदा बिहार से हैं, चांदनी खटोत इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और जयेश कुमार यादव मसाना गुजरात से हैं। तो खुशी, सभ्यसाची, पूजा, प्रीति, विवेकारेंद्र, चांदनी और जयेश, आप सभी साथों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून का महीना खत्म हो गया है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 25वीं तारीख को हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये बचे हुए जो लगभग 85 दिन हैं, इनको भी गुजरने में वक्त नहीं लगेगा। आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और आपको लग रहे थे कि अभी तो 4 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं। मित्रों, वह भी गुजर जाएगा। बस मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि प्लीज अपनी मानसिक स्थिति को सीखने के स्तर पर धीरे धीरे ले आइए। जब आप अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे, आप अपने को अंदर से खाली महसूस करेंगे, अपने अहम के भाव को समर्पण के भाव में ले आएंगे, तो बट नेचुरली कि आपकी जो सीखने की क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब अवसर है बधाई देने का, तो सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से भी अपने थर्ड बैच के स्टूडेंट विकेश बिसेन जो बालाघाट के रहने वाले हैं उनको बधाई देना चाहूंगा, और बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने MPPSC के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना स्थान बना लिया है। तो विकेश, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य की सफलताएं आपकी इससे भी बेहतर हों। हम सबकी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, एक हमारे फोर्थ बैच की स्टूडेंट रही हैं प्रियंका लिखार, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। मुझे याद आ रहा है कि जो फेयरवेल एड्रेस जो चल रहा था उसमें छोटा सा प्रोग्राम हम स्टूडेंट के लिए रखते हैं कि वो अपने को आकर के मंच पर एड्रेस करें। उसमें उन्होंने एक कविता सुनाई थी, ये बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने सूचना दी है कि प्रियंका लिखार की एक जो कविता है वो मराठी काव्य सम्मेलन के लिए सेलेक्ट हो गई है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से भी। मित्रों, मुझे मालूम है कि जो मराठी काव्य सम्मेलन है वो देश के बहुत ही मान्यता प्राप्त और स्थापित और सम्मानित काव्य सम्मेलनों में से एक माना जाता है, और उसमें प्रियंका की कविता का चयन होना एक बड़ी बात कही जा सकती है। तो प्रियंका, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, अब दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। पहली सूचना यह है दोस्तों कि अब जो सितंबर अक्टूबर की क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सीटें बाकी हैं। आपको शायद ध्यान होगा कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस बात की सूचना दी थी कि थोड़ी सीट्स बची हुई हैं, तो आप सब जितनी जल्दी हो सके, अगर आप आने का विचार बना रहे हैं तो निर्णय लें और अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं आज आप लोगों को फिर से अंतिम बार ये सूचित कर रहा हूं कि अब बहुत ही कम सीट्स बची हैं, और यदि आप सितंबर अक्टूबर के ही बैच में आना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि अब इसमें आप बिल्कुल भी देरी न करें, क्योंकि किसी भी दिन अब जो मेरी नेक्स्ट घोषणा होगी सच पूछे तो वो यही होगी कि अब सितंबर अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। तो मित्रों आप निर्णय लें, और नहीं आना है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आना है या नहीं आना है मैं एक निर्णय लेकर के उस पर एक्शन ले लें। ये बात मैं खासकर इसलिए कह रहा मित्रों, अदरवाइज बाद में हम लोगों पर बहुत प्रेशर आता है कि सर हमारे लिए बहुत जरूरी है और मुझे पता नहीं लगा और मुझे एकोमोडेट कर लीजिए। दोस्तों फिर वो बहुत मुश्किल होता है, असंभव ही होता है, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, वो बात असंभव ही हो जाती है। और इसलिए भी मैंने आज फिर से आप लोगों को याद दिलाया है या बताया है कि हो सकता है कि पहली बार बहुत से स्टूडेंट्स न भी सुन पाए हों, ताकि वो अब इस जानकारी को हासिल कर लें। फ्रेंड्स दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि हम लोगों ने पिछली बार भी आप लोगों को करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, वो मॉक टेस्ट इस बार भी उसी तरह के हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसका पहला जो पार्ट है उसका पहला अंश है कह लीजिए कल वेबसाइट पर डाल दिया गया, FEIS.com पर डाल दिया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस वेबसाइट पर जाएं, और अभी 50 क्वेश्चंस डाले गए हैं। फ्रेंड्स जानबूझ करके हमने इसको 50 का रखा है, क्योंकि देखिए ये आपकी अभी प्रैक्टिस है और शुरुआत की प्रैक्टिस है, ये फाइनल प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए हमने 50 क्वेश्चंस रखे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हर सप्ताह हम आपको इस तरह के 50 क्वेश्चंस उपलब्ध कराते रहें। मित्रों यहां मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, खासकर इस मॉक टेस्ट से जुड़ी हुई ही बातें कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी में आप लाइफ मैनेजमेंट को भी लेकर चलें, आज लाइफ मैनेजमेंट के लिए फिर मेरे पास अलग से वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास कल एक स्टूडेंट का फोन है, मैसेज आया है जो झारखंड की रहने वाली है, उन्होंने लिखा कि सर कल जो आपने पढ़ करके थोड़ा सा सुनाया तो उससे कितनी सारी चीजें हम लोगों को जानकारी में आई, अदरवाइज तो हम इन चीजों को कभी जान ही नहीं पाते। आपको मालूम है कि मैंने आपको आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद के सिद्धांत की कैसे खोज की थी, उस दौर की उनकी मानसिकता और उनकी एक्टिविटीज के बारे में एक अंश पढ़कर सुनाया था। फिर उन्होंने एक बड़ी बात लिखी जो पढ़ने में तो छोटी सी लगती है, और वो ये कि सर मुझे ये पता लगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें सीखी जा सकती हैं। मित्रों यही जीवन का सत्य है, सच पूछे तो बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है, वो चीज छोटी ही होती है, वो तो बड़ी बनाई जाती है। सेव का पेड़ से टूट कर गिरना कोई बड़ी चीज नहीं थी, वो तो छोटी सी चीज थी जो रोज घटता था, न्यूटन ने उसे बड़ा बना दिया और ग्रेविटेशन की थ्योरी एस्टैब्लिश कर दी और पता नहीं क्या क्या, वो न्यूटन के तो फिर वहां से पूरा का पूरा जीवन ही वो बदल गया। तो मित्रों चाहे वो डेली ऑडियो गाइडेंस को आप सुन रहे हो, चाहे जो आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं उसकी आप एक छोटी सी क्लिपिंग्स को पढ़ रहे हो, या जो करंट कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं आप उस करंट कंटेंट को देख रहे हो, अपने आप में अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये छोटी सी चीज लगेगी, और ये है भी छोटी सी चीज ही मैं कह सकता हूं, लेकिन जब आप उसको कंप्लीट में फिट करके देखेंगे यानी कि संपूर्णता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि एक कार, राइट, मान उस कल्पना कीजिए कि कार के जितने भी पुर्जे कार में लगते हैं और सब अलग अलग ढेर में रखे हुए हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें लगेंगी, लेकिन एक कार जब बनकर आ गई है तो उसके जो नट बोल्ट हैं जिसने पहियों को कार से जोड़कर रखा है, आप कभी उसके बारे में सोच करके देखिए कि इस नट बोल्ट की क्या वक्त है, वहां नट बोल्ट का ढेर लगा हुआ था आपको छोटी चीजें लग रही थी, लेकिन यहां जबकि वो चीजें कार में फिट हो चुकी है, अगर ये नट बोल्ट न हो तो चाहे आपकी 5 करोड़ की कार ही क्यों न हो 5 रुपए की भी उसकी वक्त नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब टायर ही फिट नहीं हो रहा है तो फिर कार चलेगी कैसे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जब आप चीजों को लेना समझना और सोचना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप सबके जीवन की गुणवत्ता में कितना परिवर्तन आता है, क्योंकि फिर आप हर छोटी छोटी चीजों को महत्व देने लगेंगे, चाहे वो छोटा सा व्यक्ति हो, चाहे वो जीवन की छोटी सी घटना हो, चाहे आपके पास की छोटी सी वस्तु हो, हर चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण लगने लगेगी। जीवन में जिन लोगों ने भी कुछ किया है पाया है, सच पूछिए तो इसी तरीके से पाया है। उन्होंने छोटे को बड़े में बदला है। बड़े को तो आप बड़े में आप बदल करके आप क्या कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी बदला जा चुका है। अगर कोई चीज बड़ी है तो बदली जा चुकी है ना, तो उसमें आपकी गुंजाइश कहां है? थोड़ी बहुत आप सुधार कर, थोड़ा बहुत सुधार कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए। तो अपग्रेड करने वालों का नाम तो हम नहीं जानते। शुरुआत में जब कंप्यूटर था, बताते हैं कि वो इतना बड़ा था कि उसे बहुत बड़े हॉल से निकाला गया, इतना बड़ा कंप्यूटर था। अब कंप्यूटर बनाने वाले का नाम जानते हैं बस, अब उस कंप्यूटर अपग्रेड होते होते आज कहां पहुंच गया, आप उनका नाम नहीं जानते हैं। तो मित्रों यही होता है, और इसी को मैं लागू करना चाहूंगा आपके, आपको जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है उस पर। अब जो मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे क्या समझ रहे हैं। आप इसे 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन समझ सकते हैं, मेयरली 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन, कि ठीक है एक बार इसको पलटो देखो और इसके बाद किनारे कर दो। आप इसे अपने मूल्यांकन की कसौटी समझ सकते हैं, कि मैं देखता हूं कि मैं इसमें से कितने बना पाता हूं, मैं इसमें से कितनों के बारे में जानता हूं, ये आप कसौटी कर सकते हैं। और जब आप इसे मूल्यांकन की कसौटी समझेंगे तो आप इसे और ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, आप पता लगे कि उसी क्वेश्चन के बारे में आप 10 मिनट विचार कीजिए कि ये क्यों नहीं बन रहा है, क्या वास्तव में क्वेश्चन इतना कठिन है कि आपसे बन ही नहीं पाएगा, या आपने इसे पढ़ा ही नहीं था, और अगर पढ़ा नहीं था तो क्यों नहीं पढ़ा था, क्यों छूटा, और अगर पढ़ा था और अभी नहीं बन पा रहा है तो फिर पढ़ने में कहां गड़बड़ी हुई, अभी क्यों नहीं बन पा रहा है, तो क्या आप भूल गए, भूले क्यों, कहीं इसलिए तो नहीं भूल गए क्योंकि बाद में आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसको कभी दोहराया ही नहीं दिया, या आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सोचिए कि क्या मेरे पढ़ने के स्टाइल में गड़बड़ी है, वहां मुझे अपने आप को कुछ सुधारना पड़ेगा, कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि केवल यह मूल्यांकन न करके कि मैंने 50 में से 25 बना लिए और इस तरीके से मेरा 50% स्कोर हो गया और आईएएस में सेलेक्ट होने के लिए 55% होना चाहिए, तो मैं लगभग आसपास हूं, तो आप अपने को संतोष महसूस कर सकते हैं और बात खत्म हो जाएगी, 50 क्वेश्चन आपके लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन मित्रों ये छोटी सी चीज है, और इसे मैं जैसा कि अभी मैंने आपको मूल्यांकन के इतने आधार बनाए, तो इसको आप विस्तार देते देते आप पता नहीं कितनी चीजों तक ले जा सकते हैं। जैसे आप इन 50 प्रश्नों को एक तरीके से अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने उस उत्तर को सही किया है, राइट? तो कम से कम जो आपको मालूम नहीं थी आप उनको पढ़ करके याद कर सकते हैं कि अच्छा ये फैक्ट मुझे नहीं मालूम था। ये बात अलग है कि ठीक है कि मैंने उत्तर सही दे दिया, लेकिन वो हो गया, वो मैं पावर ऑफ असेसमेंट यानी अनुमान लगाने की क्षमता के आधार पर वहां तक पहुंचा हूं, वस्तुतः मुझे नॉलेज नहीं थी। तो आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ने के बाद वह आपके नॉलेज के खजाने का हिस्सा बन जाएगा। जब वो आपके नॉलेज के खजाने का हिस्सा बन जाएगा आप धनी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। वो हो सकता है कि इसी साल की परीक्षा में आपके काम आ जाए, अगर इस साल की परीक्षा में काम नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर की परीक्षा में काम आ जाए, प्री में काम ना आए मेंस में काम आ जाए, मेंस में ना आए इंटरव्यू में आ जाए, निबंध लेखन में काम आ जाए। आपको अंदाजा थोड़ी है कि वो, अगर आपके पास वो पैसा है, क्योंकि पैसा तो फिर एक ऐसी चीज है ना कि उससे तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है कि एक वस्तु देकर के वस्तु ही खरीदी जा सकती है। पैसे में तो यही शक्ति होती है ना कि उससे आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, वस्तु अगर है तो। तो मित्रों इसी मॉक टेस्ट के 50 प्रश्नों को, जो आपको मेयरली 50 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, उसे आप बहुत विस्तार दे सकते हैं, इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जिस स्टूडेंट में, जिस व्यक्ति में इस वैल्यू को बढ़ाने की जितनी ज्यादा क्षमता होती है, वो मान करके चलिए कि वो जीवन में उतना ज्यादा सफल होता है और उतनी ही ज्यादा महानता के करीब पहुंचता है। दोस्तों आप भी आईएएस बनने के बाद आप भी किसी जिले के कलेक्टर बनाए जाएंगे, 50 लोग उससे पहले भी कलेक्टर बनाए जा चुके थे, आपके जाने के बाद भी 50 लोग कलेक्टर बनाए जाएंगे, जिला वही होगा, लोग वही होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन क्या कारण है कि उन 100 कलेक्टर्स में से 2-3 लोगों को लोग याद करते हैं? चीजें तो सब कुछ वही थी, क्योंकि उसने वहां की छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीजों में कन्वर्ट किया है। तो मित्रों, मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं यही छोटी सी बात आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा था, और फिर मुझे लगा कि चूंकि मैंने एक अंश कल पढ़ा है तो आज थोड़ा सा अंश न पढ़ करके कुछ मुझे इसी तरह की बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मेरी आवाज आज भी काफी धीमी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं जरा भी तेज से और ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करूंगा तो संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बोलने में डेफिनेटली परेशानी तो होती ही है, इसलिए मुझे संभल संभल कर बोलना पड़ता है ताकि अंदर के जो जख्म हैं, टांके जो हैं, वो और ज्यादा उन पर दबाव न पड़े दोस्तों। तो इसीलिए अभी की जो मेरी हकलाहट है, जो रुकावट है, इसको थोड़ा सा आप लोग बियर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो तो 7वें वेतन आयोग की थी, लेकिन फिर भी मैंने सिविल सर्विस के लिहाज से आपके लिए 3 पॉइंट छांटे हैं। पहला तो 7th पे कमीशन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। दूसरा है ई कॉमर्स की चर्चा आपने न्यूज में सुनी, प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आप जानते भी हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बड़े समर्थक हैं। जैसे राजीव गांधी जी को एक तरह से भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता था, तो उन्होंने उसको रिव्यू किया है और कुछ बातें कही हैं, तो ई कॉमर्स का मैटर है। और तीसरा, जो 3 बार तलाक लेकर के जो मुस्लिम समुदाय में धर्म में तलाक देने का 3 बार तलाक तलाक कहने पर जो बात होती है, ये 3 पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आज 7वें वेतन आयोग के बारे में। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है कि इससे पहले 2006 में जब 7th पे कमीशन आया था, उस समय पे कमीशन पर आधारित क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। प्री में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेंस में पूछा गया था। बस मैं 1996 का जब कमीशन आया था, इससे पहले 10 साल पहले 1996 में आया था, 96-97 में आया था, लागू शायद 98 में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस समय के क्वेश्चन पेपर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या उस समय भी पे कमीशन को लेकर के कुछ पूछा गया था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन 2006 में पे कमीशन आया था, फिर वो 7 में पूछा गया होगा, 8 में पूछा गया होगा, क्योंकि आप तो देखते हैं कि ये तो 10 साल के बाद आता है। जैसे फाइनेंस कमीशन, अभी 14वां वेतन आयोग चल रहा है ना, एक साल पहले से वो आ चुका है। तो पिछली बार प्री में पूछा गया, 2-1.5 साल पहले आ चुका है, प्री में पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया, और आगे भी कुछ पूछा जाता रहेगा जब तक कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो लगभग यही है जो 7वां वेतन आयोग है, मान करके चली कि करीब 2-1 साल तक तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप अखबारों में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, तो मैं इसके बेसिक्स पर आपसे बात करना चाहूंगा और सिविल सर्विस के लिहाज से बात करना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इधर भी दिलाना चाहूंगा कि किस तरीके से अखबारों में जो चीज लिखी जाती है वो बहुत स्पष्ट नहीं होती है कभी कभी, खासकर जो टेक्निकल चीजें होती है, जैसे इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। उसमें जो लिखने वाले जो है, मतलब एक्सपर्ट तो आर्टिकल के फॉर्म में लिखेंगे, तो आर्टिकल वाले फॉर्म में आपको उतनी मतलब किसी तरह की गलती नहीं मिलेगी, लेकिन जो रिपोर्टिंग फॉर्म है उसमें आपको काफी कुछ उसमें गुंजाइश होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियां करते हैं या गलतियां होती हैं, स्पष्टता नहीं होती, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। लिखा तो उन्होंने सही है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता है। उन बातों को लेकर के मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, हर 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक आयोग बैठाती है, और उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें दोनों आते हैं, वो जो अभी नौकरी कर रहे हैं और दूसरे वो जो नौकरी से रिटायर होकर के जिन्हें पेंशन मिल गई है, इनके वेतन के बारे में विचार किया जाए, इनकी सैलरी को, ताकि उसको ज्यादा कंटेम्प्रेरी बनाया जाए और व्यावहारिक बनाया जा सके, ये उसका काम होता है। तो ये 7वां वेतन आयोग है, देश की आजादी के बाद से वो अपनी रिपोर्ट दी है, अब सरकार उसे कल कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है लागू करने के लिए, और उसने अपनी बातें कह दी है। अब आप देखिए कि आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मिल गई हैं वेतन आयोग के बहाने, जैसे आपको लगभग लगभग ये बात, ये डेटा आपको पता लग गया है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 47 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, 47 लाख, 47 लाख, ये आपके दिमाग में एक डेटा बैठ जाना चाहिए, 47 लाख, और 53 लाख के करीब वे लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं, मतलब टोटल 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार को देना पड़ रहा है। मित्रों, मैं जानबूझ करके ये बात कर रहा हूं, पेंशन वाला भी आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रीस में जो आर्थिक संकट हुआ था वो पेंशनधारियों को ही पेंशन देने में इतना पैसा सरकार का लग रहा था कि सरकार दिवालिया हो गई थी। तो मालूम होना चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम करती है, कहां उसका पैसा जाता है, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज के प्रति कंसर्न होती है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, यही तो बेसिक्स होती हैं। क्योंकि अगर ये बहुत बेसिक चीजें आपको नहीं पकड़ में आएंगी तो फिर आप सही एनालिसिस तक नहीं पहुंच सकेंगे, आप ऊपर ऊपरी तौर पर ही चीजें आपके रह जाएंगी। फिर आपने ये भी उसमें देख सुना, स्पेशली सुना कि ये जो 47 लाख कर्मचारी हैं इसमें से शायद 14 लाख के आसपास का डेटा दिया हुआ था कि वो डिफेंस में है, तो 47 में से आप 14 घटा दीजिए, क्योंकि आप आर्मी से कोई समझौता नहीं कर सकते, आर्मी में तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो देश की सुरक्षा का सवाल है। तो 47 में से 14 आप घटा देंगे तो आपके पास 33 लाख बचेंगे, राइट। अब इस 33 लाख में, हालांकि वो न्यूज में नहीं था, तो फिर आप जाएंगे कि रेलवे में बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई, फोर्स मतलब लोग लगे हुए हैं रेलवे में। मैं रेलवे की चर्चा यहां स्पेशली क्यों कर रहा हूं, रेलवे के लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, रेलवे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि रेलवे हमारा खर्चा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रेलवे तो कमाई करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना। रेलवे तो एक उसी तरह से जैसे कि कोई कंपनी या कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनी चला रहा हो, कोई एयरलाइन चला रहा हो, जेट एयरवेज चला रहा है, तो जेट एयरवेज अपने लोगों को जो सैलरी दे रहा है वो देने के बाद भी तो कमाई कर रहा है ना। तो याद रखिये कि जो कमाई करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रेलवे जैसा कि मैंने कहा एयरलाइंस का, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, लेकिन ये सरकार का खर्च नहीं है, ये तो कमाई करके दे रहे हैं। हाँ, खर्च करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको बदले में कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन उसके बिना भी ये काम नहीं कर सकते, जो दूसरे लोग हैं वो काम नहीं कर सकेंगे, मतलब वो अर्थहीन नहीं है। जैसे पुलिस, पुलिस आपको क्या कमा करके देगी, कुछ नहीं कमा के देगी, पुलिस के ऊपर इतना खर्चा करना पड़ा। जैसे आर्मी आपको कोई कमाई नहीं देती है लेकिन उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या बिना आप आर्मी के रह जाएंगे, क्या आप बिना पुलिस के सरवाइव कर सकते हैं। यहां की जो पूरा का पूरा प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन मेंटेन कर रहा है, वो क्या कमाई कर रहा है, वो तो खर्च ही कर रहा है ना। लेकिन अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो क्या रेल चल पाएगी, क्या हम एक सही सुरक्षित नागरिक का जीवन जी पाएंगे। तो इसको आपको तीन सेक्टर में बांट कर देखना होगा, दो सेक्टर में स्पेशली, वे जो कमाई कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जितना लेते हैं उसे कई गुना देते हैं, और दूसरा वह है जो खर्च वाले में है लेकिन जो जरूरी है, जिनके बिना पहले का अस्तित्व काम नहीं कर सकता। तो मित्रों, अब मैं इसके एक दूसरे इशू पर आता हूं, राइट। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही मोटा सा एक सिनेरियो बता दिया जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, रियलिटी तक कैसे पहुंचा जाता है। अब देखिए, जैसे कि एक कल भी मैंने अखबार में ये चीज पढ़ी थी, और कल फिर मेरे पास एनडीटीवी से एक जर्नलिस्ट का फोन भी आया था, वो जानना चाहती थी इसकी रियलिटी को, तो मैंने डिटेल में बताया तो वो दंग रह गई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट को भी बताना चाहिए। जैसे आज भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूनतम वेतन है वो 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है, पढ़ा है आपने, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो हमारे देश के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट है, कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक हाईएस्ट रैंक होता है, उनकी जो सैलरी थी वो 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। तो जब आप इस, अब आंकड़ों की सच्चाई देखिए कि जब आप इस आंकड़े को पढ़ते हैं 7,000 से 18,000, आपको क्या लगता है, 2.5 गुना हो गया ना, सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई, अरे बाप रे। कैबिनेट सेक्रेटरी की 90,000 से 2.5 लाख, 3 गुना बढ़ गई कैबिनेट सेक्रेटरी की, अरे बाप रे, 3 गुना सैलरी बढ़ गई, और ये न्यूनतम सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई। आप इधर एक आंकड़ा पढ़ते हैं, फिर जब आप वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अखबार में ही पढ़ते हैं, तो जो औसत जो सैलरी बढ़ेगी वो 23 पॉइंट समथिंग बढ़ेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या मामला हुआ, 7,000 की सैलरी बढ़ा के 18,000 कर दी गई, 90,000 को बढ़ा करके 2,50,000 कर दिया गया। तो यहां तो 250 और 300% वृद्धि दिख रही है, और यहां कह रहे हैं कि 25% वृद्धि, 23% वृद्धि है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको उनका व्यावहारिक अनुभव नहीं है, इसलिए आप उसको क्लियर भी नहीं कर सकते। और लिखने वाले ने चूंकि वहां थोड़ी सी स्पष्टता नहीं, इस चीजों को स्पष्ट नहीं, गलत नहीं लिखा है, देखिए चीजों को स्पष्ट नहीं किया है, उससे ये कन्फ्यूजन प्रिवेल हो जाते हैं। तो मित्रों, यहां मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, गवर्नमेंट की एक बेसिक सैलरी होती है, तो जो बेसिक सैलरी थी वो ये जो बढ़ाया गया है वो बेसिक सैलरी बढ़ाई गई, 7,000 को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। मतलब जो 7,000 रुपए बेसिक्स थी, मतलब आप देखिए 2006 में, 10 साल पहले, अब उसको 18,000 कर दिया गया। लेकिन इन 10 सालों में हुआ क्या है, ये बेसिक तो 7,000 ही रही है, लेकिन इस 7,000 के ऊपर उनको हर साल डीए मिलता रहा है। जैसे आपने एक और भी न्यूज सुनी होगी, लेकिन जो महंगाई भत्ता है जिसको हम डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई बढ़ने के समकक्ष कुछ भत्ता बढ़ाते रहते हैं, तो सरकार अपने कर्मचारियों का हर 6 महीने में 3% सैलरी बढ़ा देती है, 3%, यानी कि जिनके 7,000 रुपए आज थी मान लीजिए, तो उनका हर 3 महीने के बाद उसमें से 210 रुपए बढ़ जाएंगे, राइट, 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने में 210 रुपए बढ़ जाएंगे। तो वो लेकिन बढ़ाने का जो होगा वो बेसिक्स ही होगा। तो इस तरीके से पता लगा कि ये 10 सालों में वो 3-3% बढ़ते बढ़ते, कभी कभी गवर्नमेंट और भी डिसीजन लेती है, तो जो डियरनेस अलाउंस है वो 150% हो चुका है, मतलब 150% ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको जो अभी सैलरी मिल रही है वो 7,000 रुपए बेसिक मिल रही है, 100+% हो चुका है। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100% बढ़ चुका है उसका डीए, तो 7,000 रुपए उसका बेसिक हो गया है और डीए हो गया है 7,000 रुपए। तो इसकी जो टोटल सैलरी हो रही है अभी 14,000 रुपए हो रही है, लेकिन उसकी बेसिक 7,000 ही है, क्योंकि जो बाकी गवर्नमेंट जो दूसरे भत्ते देती है वो बेसिक्स के आधार पर देती है। जैसे सरकार आपको मकान देगी, और अगर आप सरकार का मकान नहीं लेंगे तो उस मकान के बदले में सरकार आपको एचआरए देगी, उसको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस देगी, ठीक है। अब सरकार हाउस रेंट अलाउंस कितना देगी उसको फिक्स करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेक्रेटरी को भी उतना ही हाउस रेंट अलाउंस देगी जितनी कि वो सेक्शन ऑफिसर को देगी, तो उसमें फिर बेसिक आ जाएगा कि बेसिक्स का 15%, तो जिसको 7,000 की सैलरी मिल रही है उसको उसका 15% मिल जाएगा 1,050 रुपए, और जिसको 90,000 की सैलरी मिल रही है अगर वो सरकारी मकान नहीं मिल रहा है तो उसको अब 90,000 का आप 15% लगा लीजिए तो 13,500 रुपए हाउस रेंट मिल जाएगा। तो बेसिक इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो 3% जो मैंने डीए की बात कही वो तो बेसिक पर ही कैलकुलेट होता है, तो बेसिक को वही रहने दिया जाता है। तो अब दोस्तों, जिसकी 7,000 सैलरी थी बेसिक थी, उसको 7,000 रुपए डीए भी मिल रहा था, तो ये हो गया 14,000 रुपए। तो ये मान के चलिए कि 14,000 रुपए ऑलरेडी उसका है, तो अब जो बढ़ाया गया है वो 14,000 का 18,000 किया गया है, 7,000 का 18,000 नहीं किया गया है, लेकिन टेक्निकली 7,000 का 18,000 किया गया है। तो इसी में आप एक और लैंग्वेज पढ़ेंगे कि जो डीए है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया गया है, उसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब इस 18,000 रुपए के ऊपर उनको कोई डीए नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्ट 18,000 है। लेकिन अब फायदा उसका उसको ये होगा कि अभी भी आपने देखा कि 3% 6 महीने में उसको डीए मिलेगा, तो अब उसको 18,000 पर 3% मिलेगा। तो अब आप 18,000 पर 3% कैलकुलेट कीजिए तो उसको उतना पैसा डीए के रूप में मिलेगा, राइट। तो इस ये कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं फ्रेंड्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स के उस पर क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर आप सीधे सीधे इस पर मत उतर जाइए कि सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बहुत बढ़ा दी गई है और ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है और सरकार के ऊपर तो इतना बड़ा बोझ आ गया है और सरकार के लोग कुछ नहीं करते हैं। थोड़ा सा संतुलित होकर के सोचिएगा तो वो कैसे संतुलन आए उसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। आपने ये भी देखा दोस्तों कि फिर ये भी हुआ कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो हमारा घरेलू शेयर बाजार है 216 अंक बढ़ गया। ये क्या हो गया, शेयर बाजार से क्या हो गया, इसको आप सोचिए। मुझे लगता है कि जो 2006-07 में जो क्वेश्चन में बता रहा हूं कि आया था वो कुछ इसी से ही रिलेटेड था कि इससे इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये कुछ इस तरह का था। अब देखिए कि गवर्नमेंट, हमारे वित्त मंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इससे सरकारी खजाने पर हर साल 1,02,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, यानी कि सरकार अब अपने कर्मचारी अधिकारियों को एक साल में हर साल 1,02,00,000 रुपए ज्यादा देगी सैलरी के रूप में, राइट। अब इसको आप मुद्रा के सप्लाई से जोड़ लीजिए, और खासकर में जो फर्स्ट से लेकर के फोर्थ बैच तक के स्टूडेंट रहे हैं वो अब मांग और सप्लाई के डिमांड के की थ्योरी के बारे में, जिस पर पूरी मैंने एक क्लास आपको समझाने की कोशिश की अलग अलग तरीके से, आप अप्लाई कर दीजिए। जब लोगों की सैलरी बढ़ेगी, लोगों को पैसा मिलेगा, उस पैसे का लोग क्या करेंगे, उस पैसे का ठीक कितना बचत करेंगे, कुछ बचत कर लेंगे बाकी यूज करेंगे ना, वो पैसा बाजार में आएगा। बाजार में किस रूप में आएगा, उपभोग के रूप में आएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना शुरू कर देगा, जिसके पास बाइक है वो फोर व्हीलर ले लेगा, जिसके पास साइकिल है वो बाइक ले लेगा। कुछ लोगों को लगेगा यार अब सैलरी ठीक ठाक हो गई तो चलो मकान बनवा ले लेते हैं, तो वो मकान लेगा। तो इन सब चीजों में, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी, इन सब चीजों की जब डिमांड बढ़ेगी तो उन कंपनियों को फायदा होगा, उन फैक्ट्रियों को फायदा होगा, तो उनके शेयर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप जब लिंक करना सीख जाएंगे जिस दिन दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि उस दिन आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, और यही सिविल सर्विस की तैयारी करने का तरीका है। अब आप देखिए कि मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, बिल्कुल सरल सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत ही व्यावहारिक चीजें हैं, इसमें कहीं कोई शास्त्र नहीं है, कहीं कोई व्याकरण नहीं है, कहीं कोई फार्मूला नहीं है, कहीं कोई विज्ञान नहीं है, कहीं कोई बहुत ज्यादा जोड़ घटाव नहीं है, है ना। सिंपल सी चीज है, व्यावहारिक की चीज है, और आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी इसी व्यावहारिक स्तर पर करनी चाहिए। तो मित्रों, अब कुछ और भी चीजें थी, हो सका तो मैं कल आपको के साथ शेयर करूंगा, जो दो टॉपिक ई कॉमर्स और तलाक को लेकर के है, अब वक्त नहीं है, उसे मैं अब यहीं मैं ड्रॉप करता हूं, लेकिन आगे हम कभी भी जैसे ही समय मिलेगा इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे। मित्रों, अब प्रेस क्लिपिंग्स पर मैं आता हूं, काफी प्रेस क्लिपिंग्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, प्लीज इसको आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल प्रेस क्लिपिंग्स है, और आप लोग अब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि प्रेस क्लिपिंग्स के साथ न्याय कर सकते हैं। मित्रों, ईमेल पर आता हूं मैं, अनिल राठौर का ग्वालियर मध्य प्रदेश से मेल है जो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, तो अनिल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल भी मुझे बहुत से जो मेल मिले हैं उसमें मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता और प्रार्थनाएं दोनों झलक रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे यकीन है कि अब जो सैटरडे संडे का जो रेस्ट होगा, उस रेस्ट के बाद हो सकता है कि मंडे को हम लोग उसी तरीके से बात कर सकें जिस तरीके से इस सप्ताह से पहले बात किया करते थे, और आप लोगों की जो दुआ है वो डेफिनेटली दवा का काम करेगी। मित्रों, बहुत धन्यवाद, और कुछ मेल लिखने वाले दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं। मजहर अहमद खान झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, संगीता यादव फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, शिपला मोहाली से, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अभिषेक वर्मा अनूपपुर मध्य प्रदेश से, अभिषेक त्रिपाठी न्यू दिल्ली से, बबलू गोविंद वाले हैदराबाद तेलंगाना से, और गौरव सिंह जामुई बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डीएजी को समाप्त करने की मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।